हिंदुस्तान के इतिहास में 3 जून 1995 को एक ऐसी इमारत लिखी गई जब देश की सबसे निचली जाति की एक महिला, मतलब कमजोरों में भी कमजोर वर्ग के इंसान, देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी। सबसे बड़े राज्य यानी भारत की राजनीति का कोहिनूर, जहां से सत्ता संचालित होती है, जहां से पीएम निकलते हैं, पीएम बनने के लिए जहां से चुनाव लड़ना पड़ता है, आबादी में दुनिया का 5वां देश होता यूपी, ऐसे राज्य में यह अद्भुत घटना घटी। वो भी बाबरी मस्जिद विवाद और आरक्षण को लेकर हिंसात्मक आंदोलन के ठीक बाद। पितृसत्ता और जातिवाद से जूझते राज्य में दलित महिला सीएम होना जादू की ही बात थी, और दलित समाज की इस जादूगरनी का नाम था मायावती, जिनको उनके समर्थक बहन जी कहते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इसे एक अद्भुत घटना बताया था। विदेशों के बड़े बड़े अखबारों और पत्रिकाओं ने इस घटना को महत्वपूर्ण जगह दी थी, बस देवताओं ने पुष्प नहीं बरसाए थे। शायद इसकी वही वजह रही होगी। खैर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस सपने के साथ संविधान लिखा था, उसका एक हिस्सा कहीं ना कहीं पूरा जरूर हुआ। मायावती का कोई राजनैतिक बैकग्राउंड नहीं था, न ही आर्थिक या सामाजिक रूप से मजबूत परिवार था, निचली जाति का कम आमदनी वाला परिवार था। बस ये था कि परिवार में पढ़ने का अवसर था। इस पढ़ाई ने ही सब कुछ बदल दिया। पढ़ाई और अवसर मिले तो इंसान क्या न कर दे। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम था मायावती नैना कुमारी। उनके पिता का नाम प्रभु दयाल और माता का नाम रामरती था। पिता प्रभु दयाल गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के डाक विभाग में कार्यरत थे। मायावती 6 भाई और 2 बहनें हैं। उन्होंने 1975 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और फिर 1976 में मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएड किया। 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की। फिर वो एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने लगी थी। मायावती कॉलेज से पढ़कर एलएलबी कर रही थी। उधर 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद जनता पार्टी की जो नई सरकार बनी थी, उसने देश के सबसे बड़े दलित नेता जगजीवन राम को किनारे कर दिया था। चुनाव से पहले वादा किया गया था कि जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, इसीलिए वो कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में आए भी थे। लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ तो दलित समाज में काफी आक्रोश था। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दलित समाज के आक्रोश को शांत करने के लिए दलितों पर मीटिंग बुलाई गई। प्रतिनिधित्व वो भी देश के सबसे बड़े पद के साथ दांव खेलकर। इसके नाम पर बोल बच्चन के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री के पद को भाषणों से रिप्लेस किया जा रहा था। इसी मीटिंग में मंच से प्रख्यात समाजवादी नेता राज नारायण ने दलितों को संबोधित करते हुए उनको हरिजन कहा। ये शब्द महात्मा गांधी ने दिया था, पर दलित समाज ने इस शब्द को कुटिलता से जोड़ा था और इसे खारिज कर दिया था। हरिजन मतलब हरि का जन, विष्णु भगवान का आदमी। लेकिन आप अगर भगवान को मानते हैं तो हर व्यक्ति हरिजन हुआ। लेकिन ये शब्द एक और शब्द से मिलता जुलता था, वो था देवदासी। बहुत जगहों पर निचली जाति की औरतों को देवदासी बनाकर रख लिया जाता था। इस हिसाब से हरिजन शब्द भी समानार्थी ही था। ऑडियंस में बैठा दलित समुदाय गुस्से में तो था, पर चुपचाप बैठा रहा। सारे नेता बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। फिर श्रोताओं में से लोगों को बुलाया गया। 20 साल की एक लड़की आगे आई। वो मंच पर चढ़ी और दहाड़ने लगी। राज नारायण की इज्जत मिट्टी में मिल गई। समाजवादी नेता के ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। तीर कमान से, बात जबान से निकल तो चुका ही था, अब झेलना था। उस लड़की ने नेताओं की बखिया उधेड़ दी थी। दलित समुदाय के लिए यह गर्व की बात थी। उस लड़की का नाम था मायावती। तब से लेकर आज तक मायावती दलित समुदाय के लिए गर्व का ही विषय रही है। आज भी उनकी रैलियों में नीला रंग पोतकर उछलते कूदते लड़के इस बात की गवाही देते हैं। आज भी यही कहा जाता है कि चाहे सीट आए ना आए, मायावती के यूपी में 20% वोट पक्के हैं, उनमें कोई सेंध नहीं लगा सकता। बहरहाल, उस वक्त देश के इन नेताओं से अलग एक व्यक्ति दलित समाज को जगाने का काम कर रहा था। अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर पूरे देश में घूम घूम कर वो व्यक्ति दलितों को इकट्ठा कर रहा था। वो बाबा साहब अम्बेडकर तो नहीं था, लेकिन कसम से वो कम भी नहीं था। वो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए साइकिल से घूम रहा था, पैदल घूम रहा था, दलितों में से लड़के लड़कियों को चुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि लड़ाई लंबी है। उस आदमी का नाम था कांशीराम। संयोग से कांशीराम भी उस शाम दिल्ली में ही थे। मायावती के घर पर रात को दस्तक हुई। दरवाजा खोला गया तो सामने कांशीराम खड़े थे। उनको पता चला था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किसी लड़की ने सबको धो दिया है। परिवार से कांशीराम का परिचय हुआ, मायावती से बात हुई। कांशीराम ने पूछा कि क्या कर रही हो बेटा। मायावती ने जवाब दिया कि पढ़ाई कर रही हूँ और पूरी कर सिविल सर्वेंट बनूंगी। कांशीराम ने जवाब दिया, कलेक्टर बनकर तुम अपना भला कर पाओगी, लेकिन इससे समाज का भला नहीं होगा, क्योंकि कलेक्टर तो वही करता है जो उसे नेता बोलता है। हालांकि मायावती के लिए कलेक्टर बनना एक सपना था जिसे वो पूरा कर रही थी, लेकिन कांशीराम की बातों ने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया। उन्होंने तय कर लिया कि राजनीति के ही रास्ते पर चलना है और उन्होंने कांशीराम का संगठन बामसेफ ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उन्हें सबसे पहले अपने परिवार का प्रतिरोध झेलना पड़ा, पिता और भाइयों का। मायावती के पिता प्रभुदास को बेटी की ये राजनीति रास नहीं आ रही थी। वो चाहते थे कि मायावती या तो कलेक्टर बने या फिर शादी कर घर बसा ले। हालांकि मायावती उस समय प्राथमिक स्कूल में टीचर थी, लेकिन परिवार से स्वतंत्र नहीं थी। पिता को लगता था कि कांशीराम नाम का ये व्यक्ति झूठे स्टारडम का सपना दिखाकर उनकी बेटी को बहका रहा है, न पार्टी का ठिकाना न इस आदमी का। यह प्रतिरोध कुछ वर्षों तक चलता रहा, लेकिन मायावती ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। एक दिन पिता ने कह दिया कि अगर इस घर में रहना है तो कांशीराम और बामसेफ से मतलब छोड़ना होगा। अब तक मायावती पर दलित मिशन छा चुका था। उनको अपना मकसद क्लियर हो गया था, उनके दिमाग में अपना मकसद साफ हो गया था। उन्होंने पिता का घर छोड़ दिया। करोल बाग में बामसेफ का दफ्तर था। मायावती अपना सामान लेकर उसी दफ्तर में आ गई और वहीं रहने लगी। कांशीराम एक टूर पर गए थे। लौट कर आए तो उनको मायावती की ये दृढ़ता अच्छी लगी। मायावती मेहनत भी तो बहुत कर रही थी। सुबह स्कूल में पढ़ाने जाती, लौट कर बामसेफ के लिए काम करती। उन्होंने लॉ में भी एडमिशन ले रखा था। कांशीराम ने उनसे पूछा कि आगे तुम्हें क्या करना है। मायावती ने दो टूक जवाब दिया, ना तो मुझे शादी करनी है ना घर बसाना है, मुझे दलित समाज के लिए ही काम करना है। फिर कुछ महीनों के बाद कांशीराम ने मायावती से कहा कि दफ्तर के बजाय मेरे घर में रह लो, क्योंकि मैं अक्सर संगठन के काम से बाहर ही रहता हूँ। कांशीराम का छोटा सा घर दफ्तर के पास ही था। मायावती वहीं रहने लगी। अपने छोटे भाई सिद्धार्थ को भी वहीं बुला लिया। लेकिन एक कम उम्र की लड़की का कांशीराम के घर में रहना लोगों को वखरने लगा। तरह तरह की बातें होने लगी। एक दिन परेशान होकर मायावती कांशीराम के पास पहुंची और कहा, मुझे अपना घर खरीदना ही होगा, मैं इस तरह कैसे रहूंगी। लेकिन कांशीराम ने समझाया कि यही सोच तो हमें बदलनी है, इतनी जल्दी लोगों के कमेंट से परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कांशीराम और मायावती के बीच एक राजनीतिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई जिसने इतिहास रच दिया। ये पार्टनरशिप चाणक्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर बैरम खान और अकबर की तरह की थी। कांशीराम और मायावती दोनों का नेचर अलग था। कांशीराम जहां मिशन के प्रति समर्पित और संपूर्ण बदलाव चाहते थे, वहीं मायावती ने राजनीति को खुद से जोड़कर ज्यादा रखा। डॉक्टर अम्बेडकर, कांशीराम और मायावती तक की यात्रा दलित राजनीति के बदलते स्वरूप को दर्शाती है। जहां अंबेडकर ने इंटेलेक्ट को ज्यादा प्रमुखता दी, वहीं कांशीराम ने संगठन की राजनीति को और मायावती ने सत्ता को। मायावती की राजनीतिक यात्रा शुरू होने में कुछ चीजों का योगदान था। मायावती के दादा का ब्रिटिश आर्मी में होना, जिसने परिवार को शिक्षा की तरफ मोड़ा। डॉक्टर अम्बेडकर की लेगेसी, कांशीराम जैसा मेंटोर और मायावती का दिल्ली में रहना, इन सारी चीजों ने मायावती को वो सपोर्ट दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। मायावती को राजनीति में आने के लिए ये एक रास्ता था, वरना अपराध गुंडागर्दी और वर्चस्व की राजनीति में उनका स्थान कैसे बन सकता था। पार्टी में आने के बाद भी मायावती को तमाम विरोधों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बामसेफ में पहले से भी बहुत सारे नेता थे। मायावती के राइस के बाद वो लोग असहज हो गए, लेकिन मायावती में एक गुण था जो उन्हें अलग बनाता था। वो अपने उद्देश्य से भटकती नहीं थी और पूरे जी जान से काम करती थी। उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर साइकिल यात्रा की, गांव-गांव गई, कांशीराम इस जज्बे को समझते थे। बहुत सारे लोगों में बात करने का हुनर तो था, लेकिन काम करने का वो जज्बा नहीं था जो मायावती के पास था। उस दौर में दलित राजनीति दम तोड़ रही थी। डॉक्टर अंबेडकर के बाद एक बड़ा मौका आया था, जब बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन 1977 में जीतने के बाद जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, उल्टा उनका राजनीतिक करियर दांव पर लग गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी, संजय गांधी, आरएसएस, पाकिस्तान, सिख मुद्दा और पूर्वोत्तर भारत के मुद्दों में पूरी राजनीति घिरी हुई थी। दलित मुद्दा ही गायब था। नतीजन कांशीराम ने तय किया कि बामसेफ को बदलना ही होगा, क्योंकि यह सिर्फ दलितों को जगाने का प्लेटफॉर्म बन चुका था। इससे आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। 1981 में कांशीराम ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4 की घोषणा की। यह भी पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, लेकिन इस संस्था में ऊपरी जातियों को छोड़कर सबको आने का निमंत्रण दिया गया। यहां से कांशीराम की राजनीतिक शुरुआत हुई। इसी संस्था के तले कांशीराम ने 1982 में दिल्ली के बोट क्लब में डेरा डाला और देश के तमाम भागों से नीले रंग की आइडियोलॉजी में रंगे हुए लोग वहां पहुंचे थे। उसी साल कांशीराम ने अपनी किताब द चमचाएज निकाली, जिसमें कांग्रेस और अन्य पार्टियों में शामिल दलित नेताओं की भर्त्सना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था देश भर में दलित चेतना जगाना, एग्रेसिव होकर। 1981 में 40 दिन का साइकिल मार्च निकाला गया। मायावती ने भी खूब साइकिल चलाई थी उस वक्त उत्तर प्रदेश में। इसी दौरान बहुत से नारे बने दलितों को जागृत करने के लिए। कांशीराम तो PR मास्टर थे ही, उन्होंने इसे एक बड़े अवसर में बदल दिया। एक ऐसा नारा गढ़ा गया जिसने काफी कंट्रोवर्सी की। यह नारा था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। यह नारा ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों को टारगेट करते हुए बनाया गया था। इस नारे ने अन्य राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ा दी थी, क्योंकि दलित राजनीति अब अपना रूप बदल रही थी, विशेषकर उत्तर प्रदेश में। DS4 ने 1982 के हरियाणा विधानसभा चुनाव और 1983 के यूपी विधानसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब दलित राजनीति को एक पूर्ण रूप से राजनीतिक पार्टी की जरूरत थी। 14 अप्रैल 1984 यानी बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी। मायावती ने शिक्षक की नौकरी छोड़ दी और अपना पूर्ण राजनीतिक जीवन शुरू कर दिया। 1984 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मायावती और कांशीराम ने चुनाव लड़ा। बसपा को अभी निर्वाचन आयोग ने सिंबल नहीं दिया था, तो दोनों ही लोग इंडिपेंडेंट लड़े। मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से और कांशीराम मध्य प्रदेश की जाजगीर सीट से लड़े। लेकिन उसी साल 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में रिजल्ट एक तरफा हो गए और राजीव गांधी भारी बहुमत से जीतकर प्रधानमंत्री बने। मायावती और कांशीराम हार गए, लेकिन अपने निशान छोड़ने में कामयाब रहे। कांशीराम की पॉलिटिकल समझ बहुत तेज थी। उनको पता था कि एक बार में तो जीतने से रहे, इसलिए अपना निशान बनाना जरूरी है। इस बार दोनों ही लोग अनरिजर्व्ड सीटों से लड़े थे। अगले साल यूपी के बिजनौर में एक रिजर्व्ड सीट पर उपचुनाव हुआ। यहां पर जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार, रामविलास पासवान और मायावती तीनों कैंडिडेट थे। मीरा कुमार ने सीट जीती, लेकिन दलित समाज का काफी वोट मायावती को भी मिला। मात्र 28 साल की मायावती अपना दमखम दिखा रही थी। कांशीराम की यही स्ट्रेटजी भी थी, हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाने की। फिर 1987 में हरिद्वार में उपचुनाव हुए, ये भी रिजर्व्ड सीट थी। मायावती यहां से भी लड़ी, अब की बसपा को मान्यता मिल गई थी। मायावती यहां से भी हारी, लेकिन हर बार उनके वोट ड्रेस्टिकली बढ़ते ही गए। कांशीराम की योजना सफल हो रही थी। वो खुद 1989 में लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद में VP सिंह के खिलाफ लड़े। वीपी ने कांग्रेस छोड़ दिया था। इलाहाबाद में काशीराम को कांग्रेस के कैंडिडेट से थोड़े ही कम वोट मिले थे, लेकिन असली सफलता मिली मायावती को। बिजनौर से वो जीत गई। वहीं हरिद्वार में उनको अच्छे खासे वोट मिले थे। बसपा को आसमगढ़ और पंजाब के फिल्लौर में भी सीटें मिली थी। कुल 3 सांसद मिले। अब सबकी समझ में आने लगा था कि दलित वोट किसी एक पार्टी की धरोहर नहीं है, बल्कि अब वो बसपा को मिलने लगे हैं। लेकिन वीपी सिंह की सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाई। मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हो गई थी और फिर राजीव गांधी की हत्या हो गई। अब की 1991 में लोकसभा चुनाव हुए तो बसपा की बुरी हार हुई। काशीराम जीते लेकिन मायावती दोनों सीटें हार गई। फिर वो बुलंदशहर के उपचुनाव में भी लड़ी लेकिन यहाँ भी हारी। फिर वो पंजाब में भी लड़ी होशियारपुर से लेकिन वहां भी हारी। ये हताशा का दौर था। सफलता की एक सीढ़ी चढ़ने के बाद बसपा बहुत नीचे चली गई थी। लेकिन राजनीति एक ऐसा खेल है जिसमें अवसर हमेशा होते हैं, आपको बस धैर्य बनाए रखना होता है। इस बीच मायावती एक बार जेल भी गई। दिसंबर 1991 में यूपी के बुलंदशहर में मायावती और वहां के डीएम के बीच मतपत्र देखने के लिए छीना झपटी और हाथापाई हो गई थी। इस घटना के बाद मायावती को इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था। तब तक दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। यूपी में भाजपा की कल्याण सिंह वाली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। 1993 में वहां विधानसभा चुनाव रखे गए। अब भाजपा के राम मंदिर वाली ताकत का सामना करने के लिए अप्रत्याशित विपक्ष खड़ा हुआ। जनता दल से टूटकर समाजवादी पार्टी बनाने वाले मुलायम सिंह यादव और बसपा के काशीराम ने अभूतपूर्व समझौता किया। नतीजा ये हुआ कि सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद भाजपा सत्ता से बाहर रही। सपा बसपा ने कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के समर्थन से सरकार बना ली। मुलायम सिंह यादव को सीएम बनाया गया और बसपा के 11 मंत्री बने। ये बसपा के लिए अभूतपूर्व जीत थी। हालांकि मायावती अभी सरकार में नहीं थी। असली खेल तो आगे होना था। सपा बसपा की सरकार चल पड़ी। जहां भी इनकी मीटिंग होती, रैलियां होती, इतनी भीड़ इकट्ठी होती कि देखने वाले देखते रह जाते। यह गठबंधन देश भर में तहलका मचाने वाला था, क्योंकि इस तरह का कॉम्बिनेशन किसी भी पार्टी के लिए खतरा बन सकता था। लेकिन व्यक्तिगत इच्छाओं ने इस गठबंधन का बंटाधार कर दिया। 1994 में मायावती इसी गठबंधन के आधार पर राज्यसभा में सांसद बनकर पहुंची, लेकिन उनका दिल तो यूपी में ही था, क्योंकि वहां पर तो बसपा सरकार में शामिल थी। ऐसा माना जाता था कि बसपा के 11 मंत्रियों को मायावती ही कंट्रोल करती है। इस बात से मुलायम सिंह यादव खफा थे। मायावती लगातार आरोप भी लगाती थी। उधर मीडिया में इस सरकार को लेकर काफी उत्तेजना थी। मीडिया बार बार मायावती को लेकर कंट्रोवर्सियल चीजें छापती थी। इस बीच एक वार्ता में मायावती ने महात्मा गांधी पर हमला बोल दिया। इस बात को लेकर इतना विवाद हुआ कि मायावती को गिरफ्तार किए जाने की मांग की जाने लगी। लेकिन मायावती अपने बयान से पीछे नहीं हटी। चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव इस पर संतुलित रहे, लेकिन उनको मायावती की राजनीतिक महत्वाकांक्षा समझ आ रही थी। वो भी समझ रहे थे कि अलायंस पार्टनर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वहीं काशीराम, जो कि बेस्ट पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे, वो इन चीजों को और तरीके तरीके से पेश करते ताकि बसपा लगातार सुर्खियों में बनी रहे। तब तक यूपी में एक नया वर्ग संघर्ष जन्म ले चुका था, ओबीसी और दलितों का। आजादी के बाद ओबीसी की कई जातियों ने प्रगति की थी और अब दलितों के लिए वो समस्या खड़ी कर रहे थे। कई जगहों पर दलितों पर अत्याचार हुए, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उतना कठोर एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी दोनों पार्टियों में मनमुटाव रहने लगा। वहीं चीफ मिनिस्टर की तरफ से बसपा के मंत्रियों के लिए समस्या खड़ी की जाने लगी। दोनों पक्षों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का माहौल बनने लगा। 1995 में जब यूपी में पंचायत के चुनाव हुए तो बसपा बुरी तरह हारी। सरकार में रहने के बावजूद धरातल पर उतना मजबूत पक्ष तैयार नहीं हो पाया था। वहीं खबर आने लगी कि मुलायम सिंह यादव धीरे धीरे बसपा के विधायकों से बात कर रहे हैं उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए। अब दोनों पार्टियों में अविश्वास इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि साथ रहना मुश्किल था। इसी बीच काशीराम और भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात हुई। वाजपेयी काशीराम को बहुत पहले से जानते थे और दोनों लोगों में आपसी सम्मान का भाव था। जून 1995 का महीना यूपी में गर्मी का एक अलग ही तूफान लेकर आया। 2 जून 1995 को मायावती और कांशीराम ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और मुलायम सिंह यादव की सरकार अल्पमत में आ गई। मुलायम सिंह यादव को जब यह पता चला तो उन्हें सहसा यकीन नहीं हुआ, और जब यकीन हुआ तो उनके गुस्से की सीमा नहीं रही, क्योंकि वो बसपा के विधायकों को तोड़ भी नहीं पाए थे अभी। नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने राजनीति की मर्यादा लांघते हुए अपने सांसद और विधायकों के नेतृत्व में लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस का घेराव कर दिया। मायावती इसी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में रुकी थी। सपा कार्यकर्ताओं ने बसपा के कार्यकर्ताओं को बंधक बना लिया। हालात ये हो चुके थे कि सपा के दबंग नेता बसपा विधायकों को अगवा करने लगे और मायावती ने खुद को बचाने के लिए कमरा अंदर से बंद कर लिया। बाहर से भद्दी गालियां और जान से मारने की धमकियां दी जाती रहीं। आखिरकार बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी हस्तक्षेप किया, क्योंकि बातचीत चल ही रही थी। और फिर मामला राज्यपाल के पास पहुंचने पर पुलिस सक्रिय हुई और फिर किसी तरह मायावती को वहां से बचाकर निकाला गया। घटना के बाद मायावती पर हमले के विरोध में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, धनीराम वर्मा, आजम खां, बेनी प्रसाद वर्मा समेत कई नेताओं के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में 3 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसमें सबूतों के तौर पर फोटोग्राफर्स की कैद की हुई तस्वीरें पेश की गईं। सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन स्टेट गेस्ट हाउस कांड का मुकदमा चलता ही रहा। मायावती इस स्टेट गेस्ट हाउस कांड को कभी भूल नहीं पाई। राजनीति देखिए, जिस भाजपा से बचने के लिए बसपा और सपा ने गठबंधन किया था, उसी पार्टी से गठजोड़ के खिलाफ यह कांड हुआ। मुलायम के लोगों ने माया को घेरा और भाजपा के लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन राजनीति इतनी ही शुचितापूर्ण होती तो बात ही क्या थी। अभी तो बहुत कुछ होना था। बहरहाल 3 जून 1995 को यूपी और देश की राजनीति में बहुत बड़ी घटना हुई। राज्यपाल की मौजूदगी में मायावती ने चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली भाजपा के सहयोग से।
मैं मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी।
मायावती पर हमले के बाद सारी पार्टियों की सहानुभूति उनके साथ थी और मुलायम सिंह यादव विलेन बन चुके थे। मायावती ने बाद में अपने भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को धन्यवाद भी किया। कांशीराम की स्ट्रेटजी सफल हुई थी। महज 11 साल में बसपा का अपना मुख्यमंत्री था। इसके बाद मायावती ने अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया। उनके क्लियर गोल थे, दलित समाज के लिए हर कुछ करना था। यूनिवर्सिटीज, शहरों इत्यादि के दलित हीरोज के नाम पर नामकरण, अंबेडकर के नाम पर जुड़ी स्कीमों को पुनर्जीवित करना और दलितों पर हुए अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई करना। दलित समाज में एक जोश भर गया। वाजपेयी और राव की बड़ाई करने के बावजूद मायावती मुसलमानों और दलितों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ बोलने से नहीं चूकती थी।
जिनकी जातिवादी मानसिकता में जकड़ी अन्य दलों की पूर्ववर्ती सरकारों ने सदैव उपेक्षा की है, अर्थात इन महान हस्तियों की अभूतपूर्ण त्याग तपस्या को देश में पहली बार उत्तर प्रदेश की बीएसपी सरकार ने विभिन्न स्तर पर पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है, जो आगे चलकर निश्चित ही इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा।
ये तो तय था कि बसपा और भाजपा का गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि आइडियोलॉजी बिल्कुल मैच नहीं करती थी। लेकिन कांशीराम इस डेवलपमेंट से खुश थे, क्योंकि अब मनचाहा हो रहा था। इस बीच ये बताना भी जरूरी है कि स्वास्थ्य कारणों से कांशीराम सीएम नहीं बने, वरना भाजपा पहले उनके ही नाम पर तैयार थी। लेकिन 2 बरस पहले ही कांशीराम को हार्ट अटैक आया था। इस वजह से उन्होंने गैलरी से ही मायावती को सीएम बनते देखा। लेकिन बसपा और भाजपा में धीरे धीरे गतिरोध बढ़ता रहा। आखिरकार अक्टूबर 1995 में भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। भाजपा ने बसपा पर ढेर सारे आरोप लगाए, श्री राम के अपमान का भी आरोप लगाया। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं था, इसलिए राष्ट्रपति शासन लग गया यूपी में। 1997 में फिर एक रोमांचक घटना हुई। चेन्नई में एक मीटिंग में काशीराम और भाजपा के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी मिले। यहां पर एक बार फिर से गठबंधन की नींव रखी गई, क्योंकि काशीराम को सत्ता चाहिए थी। बसपा के पास पीछे रहने का मौका नहीं था, वहीं भाजपा को किसी पार्टी का साथ चाहिए था। यह वो दौर था जब भाजपा के साथ ज्यादा पार्टियां गठबंधन करने में कतराती थी। कल्याण सिंह भी सत्ता से बाहर रहना नहीं चाहते थे, लेकिन वो बसपा का सीएम भी नहीं चाहते थे। इस बार जो गठबंधन हुआ वो अभी तक के हुए गठबंधनों से अलग था। इसमें बहुत सारी बातें लिखित रूप में करार की गई थी। एक बात सबसे अलग थी कि दोनों पार्टियों के मुख्यमंत्री 6-6 महीने रहेंगे। कल्याण सिंह की नापसंद के बावजूद मायावती को मुख्यमंत्री बनाया गया। दोनों पार्टियों के मंत्री बराबर संख्या में बने। ये रोचक बात थी कि कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव दोनों ही मायावती को नापसंद करते थे, जबकि अपर कास्ट के भाजपाई नेता मायावती को सपोर्ट कर रहे थे। मंडल और कमंडल का खेल अपने भीषण रूप में सामने था। चीफ मिनिस्टर बनते ही मायावती ने फिर से शहरों के नाम बदलने शुरू किए। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होने लगी। दलित हीरोज के स्मारक खड़े किए जाने लगे। साथ ही दलितों पर हुए अत्याचारों की फाइलें खोली जाने लगी। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि लंबे समय तक प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का भी पूरी तरह उपयोग नहीं हो पा रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना सब होने के बाद एक पुरानी सरकार के जाने के बाद भी काशीराम खुले में बोल रहे थे, मजबूरी में गठबंधन है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है। वहीं राज्यपाल रोमेश भंडारी के साथ भी सीएम के रिश्ते अच्छे नहीं थे। भंडारी मुलायम सिंह यादव ग्रुप के माने जाते थे, तो सरकार और राज्यपाल में लगातार टकराव होता रहता था। चूंकि भाजपा के अपर कास्ट के नेता कल्याण सिंह को दोबारा सीएम नहीं देखना चाहते थे, तो मायावती को सपोर्ट करते थे। वहीं कल्याण सिंह ग्रुप इस बात से नाराज था और गतिरोध पैदा करता रहता था। उनको लगता था कि 6 महीने में ही मायावती ऐसा कर देंगी कि भाजपा के लिए आगे आने वाला वक्त मुश्किल हो जाएगा। दोनों के बीच तकरार चलती रही और मायावती ने 6 महीने पूरे कर लिए। इसके बाद कल्याण सिंह ने चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण में दोनों पार्टियों के बीच असहजता देखने को मिली। ये असहजता तब और बढ़ गई जब कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद को देखने गए। इसके अलावा मायावती की लागू की गई नीतियों को भी उल्टा जाने लगा। बसपा के मंत्रियों को दरकिनार किया जाने लगा। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को भी कमजोर कर दिया गया और इस बात को लेकर दोनों पार्टियों में भयंकर मतभेद पैदा हो गए। बसपा ने समर्थन वापस ले लिया, लेकिन यहां पर एक चूक हो गई। बसपा को लगता था कि कल्याण सिंह की सरकार गिर जाएगी, लेकिन कल्याण सिंह सरकार बचा ले गए, बसपा के दर्जन भर से ज्यादा विधायकों को तोड़कर। मुलायम सिंह यादव जो काम नहीं कर पाए थे वो कल्याण सिंह ने कर दिखाया था। मायावती की यात्रा सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो एक दलित महिला थी जो मुख्यमंत्री बनी, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने बसपा में अपने से पहले और बड़े नेताओं को राजनीति में मात देकर वो जगह हासिल की, जिसने उन्हें ताकतवर बनाया। अपनी पार्टी में ताकतवर बनना और फिर चुनावी जीत हासिल करना एक कुशल पॉलिटिशियन की भूमिका को दिखाता है। काशीराम को अपने पक्ष में करना, जरूरत पड़े तो वाजपेयी और राव से बात करना, भाजपा की सिंपैथी अपने लिए जुटाना, ये सब राजनीति के तरीके को दर्शाता है। आप किसी महिला राजनीतिज्ञ को हमेशा विक्टिम या सर्वाइवर के रूप में नहीं देख सकते। एक वक्त के बाद आप उन्हें एक ताकतवर राजनीतिज्ञ के रूप में देखते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती ने अपने तौर तरीके जिस तरीके से बदले वो पॉलिटिक्स को समझने के लिए जरूरी है। उन पर हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि बसपा में उन्होंने किसी बड़े नेता को पनपने नहीं दिया। जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी में पुरुष ही बहुतायत में हो, वहां पर एक ताकतवर पुरुष नेता उभरे तो आसानी से पार्टी कैप्चर कर सकता है। मायावती ने यह कैसे मैनेज किया और इसके क्या प्रभाव हुए, ये जानना और समझना जरूरी है, पूरे दलित आंदोलन, राजनीति और भविष्य को देखते हुए। अगर सिर्फ मायावती के उत्थान को देखें तो यह पूर्णतः सही कदम था, अपनी राजनीति को बचाए रखना। लेकिन अगर अंबेडकर और काशीराम की पॉलिटिक्स को देखें तो तो मायावती अपने बाद दूसरी पंक्ति के नेताओं को तैयार नहीं कर पाई। ये दलित आंदोलन के लिए झटका था, क्योंकि दलित समुदाय सिर्फ मायावती से आइडेंटिफाई नहीं होता। दलित समुदाय के लिए मायावती एक प्रतीक है, संपूर्णता नहीं है। दो बार मुख्यमंत्री बनने तक मायावती ने धीरे धीरे दलित और मुस्लिम समुदायों में अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली थी। ये समझ आने लगा था कि इतना वोट तो सुरक्षित है, लेकिन दोनों ही बार जब मायावती सीएम बनी, उन्हें भाजपा का साथ मिला था। भाजपा की तत्कालीन राजनीति को अपर कास्ट की राजनीति माना जाता था। तभी एक और घटना हुई। 2002 में गुजरात में दंगे हुए। यहां पर मायावती और काशीराम पर सवाल उठे, क्योंकि उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार को समर्थन दिया था, बल्कि गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ कैंपेन भी किया। नतीजा ये रहा कि यूपी में मायावती की सरकार वापस आई, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की भाजपा के पूरे समर्थन से। इस बार मायावती को पूरी छूट दी गई थी। कल्याण सिंह भाजपा छोड़ चुके थे और पिछली बार की तरह लाचारी की सरकार नहीं मिली मायावती को। मायावती ने इस बार अपनी राजनीति भी बदली, ना तो मुस्लिमों के लिए और ना ही दलितों के लिए पहले की तरह एग्रेसिव बनी, बल्कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को लेकर मुलायम सिंह यादव से गठबंधन तोड़ा था, उस एक्ट में मायावती सरकार ने खुद ही संशोधन कर दिया। यही नहीं, भाजपा के कार्यक्रमों से पहले आपत्ति हुई थी जिसको लेकर गठबंधन तोड़ा था, इस बार वो भी नहीं रहा, बल्कि गौ हत्या अधिनियम को उनके हिसाब से बदला भी। मायावती के लिए यूपी में अब सिर्फ एक राजनीतिक दुश्मन रह गया था, सपा के चीफ मुलायम सिंह यादव। उनके लिए बसपा ने धिक्कार रैली की, तो सपा कहां कम रहने वाली थी। उन लोगों ने थू-थू रैली की। यह हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे रोचक पहलुओं में से एक है। बिहार में लालू प्रसाद यादव लाठी महारैला कराते थे और यूपी में ये सब होता था। जनता को मोबिलाइज करने के ये तरीके भविष्य में पॉलिटिकल साइंस में जरूर पढ़ाए जाएंगे, लेकिन राजनीति में हमेशा नए प्रतिद्वंदी आते रहते हैं। मायावती के तीसरे कार्यकाल में उनके सामने एक नए राजनीतिक शत्रु थे, यूपी के प्रतापगढ़ में कुंडा के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। सामंत और रजवाड़े भारत में बरसों पहले दम तोड़ चुके थे, लेकिन मीडिया हमेशा उससे ऑब्सेस्ड रहती है। राजा भैया को मीडिया ने कुछ अलग ही बना रखा था। राजा भैया का नाम तब आया था जब 1997 में कल्याण सिंह की सरकार को बचाने के लिए विधायकों को तोड़ा गया था और विधानसभा में माइक और कुर्सियां चप्पलें इत्यादि चली थी। मायावती से नाखुश राजा भैया ने अपने कुछ विधायकों के साथ समर्थन वापसी की घोषणा की, क्योंकि सरकार में उन्हें उचित आधार नहीं मिल रहा था। सरप्राइज करते हुए मायावती ने उन पर पोटा कानून लगा दिया, वो कानून जो शुरू से ही विवादास्पद था, कानून के मिसयूज का अप्रतिम उदाहरण। इसके साथ ही राजा भैया पर तमाम ऐसे केस लद गए जो आश्चर्यचकित करने वाले थे। राजा भैया का एक तालाब था जिसके बारे में मीडिया ने फैला रखा था कि उसमें मगरमच्छ रहते हैं और जिनसे राजा भैया नाराज होते हैं उनको उसी तालाब में फेंक दिया जाता है। उस तालाब में सरकार जा पहुंची हड्डियां और मगरमच्छ खोजने के लिए। राजा भैया को बिल्कुल परास्त कर दिया मायावती ने। चीफ मिनिस्टर होने के साथ ही उन्हें वाजपेयी और आडवाणी का वरद हस्त भी प्राप्त था। इस घटना के बाद मायावती की इज्जत दलित समाज में बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ऐसा कभी भी देश के इतिहास में नहीं हुआ था कि एक दलित समाज की बेटी एक ठाकुर को इस तरह से परास्त करे। बहरहाल, जिन कानूनी दांव पेचों से मायावती ने राजा भैया को परास्त किया, वही दांव पेच अब उनके खिलाफ इस्तेमाल किया मुलायम सिंह यादव ने। मायावती के बर्थडे सेलिब्रेशन, जिसमें वो नोटों की माला पहनती थी और सरकारी पैसों के दुरुपयोग को लेकर नया मोर्चा खोल दिया गया। उस समय तमाम कहानियां प्रचलित हो चुकी थी मायावती के बारे में कि मायावती सरकारी पैसों से अपने शौक पूरे करती है। इसके साथ ही मायावती के ऊपर ऐसे आरोप लगे कि वो हिंदू देवताओं का अपमान कर रही है, लेकिन भाजपा और बसपा का गठबंधन बना रहा। तब तक सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। ताज कॉरिडोर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह दिया। इस मामले में मायावती पर संगीन आरोप थे। अब भाजपा के लिए मायावती को समर्थन देना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि भाजपा में वाजपेयी और आडवाणी के अलावा दूसरे नेता भी थे। एक तगड़ा गुट था जो मायावती के खिलाफ था। अब यह गठबंधन चलना मुश्किल लग रहा था, लेकिन चल तो रहा था। अचानक एक दिन मायावती ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। ये इस आसरे पर था कि फिर जब चुनाव होंगे तो भाजपा को बसपा की जरूरत पड़ेगी। भाजपा भौचक्की रह गई, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं राजनीति एक अलग खेल है। इस खेल में कौन कब कौन सी चाल चले किसी को नहीं पता। भाजपा ने मायावती से क्षुब्ध होकर चुनाव की घोषणा नहीं कराई, बल्कि मुलायम सिंह यादव को सपोर्ट कर दिया और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपा को लगातार अपने से नीचे रखने वाली मायावती को जोरदार झटका लगा। उनके सबसे बड़े शत्रु मुलायम सिंह यादव ही सीएम बन गए। यही नहीं, उन्होंने बसपा के कुछ विधायकों को तोड़ भी लिया। यहां राजनीति देखिए, पहले भाजपा को हराने के लिए बसपा सपा ने गठबंधन किया था, तब नारा लगा था जब मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। फिर भाजपा और बसपा ने गठबंधन किया, फिर कुछ साल बाद भाजपा और सपा ने गठबंधन कर लिया। भाजपा को अपर कास्ट की पार्टी कहा जाता था, सपा ओबीसी की और मायावती दलितों की, जातीय भाईचारे की अप्रतिम मिसाल या विडंबना। मुलायम सिंह यादव ने सत्ता में आते ही सबसे पहले राजा भैया को जेल से छुड़वाया। उधर मायावती पर तड़ातड़ सीबीआई की रेड पड़ने लगी, उनसे कड़ी पूछताछ भी हुई। यहां लगा कि मायावती का राजनीतिक करियर खत्म हो गया। ऐसा लगा कि उनके बहुत से लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया। अब 2004 का लोकसभा चुनाव आने वाला था। यहां पर मायावती ने अपनी राजनीति बदली, उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया, उसी कांग्रेस का जिसको वो कुछ साल पहले बुरी तरह कोसती थी। सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। मायावती ने अब भाजपा को अपना नंबर एक दुश्मन मान लिया था। अंततः चुनाव के बाद मायावती को संतोष मिला, केंद्र में भाजपा की सरकार गिर गई और यूपीए की सरकार आई। बसपा को यूपी में 19 सीटें मिली थी, लेकिन अन्य राज्यों में जीरो। ये भी साबित हो गया था कि देश में दलितों की संख्या बहुत ज्यादा होने के बावजूद बसपा की राजनीति यूपी तक ही सीमित है। 2004 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद मायावती को कोर्ट केसों से राहत मिली। इसके बाद मायावती ने अन्य राज्यों पर फोकस किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। उधर काशीराम की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी।
ये काम महात्मा फुले ने शुरू किया, उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने चलाया, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, उसके बाद आज अमर नहीं रहने वाला हूँ। मुझे भी एक ना एक दिन जाना है, लेकिन ये काम तो चलता रहना चाहिए। इसलिए मैंने जाने से पहले ही मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये काम मेरे बाद में भी चलता रहना चाहिए, ये काम चलता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। तो इस बात को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा कि ये काम मेरे बाद भी चलना चाहिए, और मैंने मायावती से अपील की है कि आप इस काम को चला सकती है और चलाते रहना।
इन सब चीजों के बीच एक व्यक्ति का उदय हुआ, सतीश चंद्र मिश्रा, मायावती के कानूनी सलाहकार और फिर उनके राजनीतिक सलाहकार भी बने। यहां से राजनीति ने जो मोड़ लिया वो राजनीति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर के समय से और काशीराम के वक्त भी दलित आंदोलन में ब्राह्मणवाद के खिलाफ बहुत रोष रहा है। खुद मायावती ने ब्राह्मणों को खूब सुनाया था, देवी देवताओं को लेकर हमेशा एग्रेसिव रही। लेकिन 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती ने ब्राह्मणों को साध लिया। ये एक नई सोशल इंजीनियरिंग थी, सबसे ऊपर की जाति और सबसे निचली जाति का गठबंधन। यूपी की राजनीति में ब्राह्मण दरकिनार कर दिए गए थे। वहीं मायावती को भी अपने पुराने वोट बैंक से आगे बढ़ना था। इसके बाद मुलायम सिंह यादव की सत्ता पर जोरदार प्रहार होने लगे। सपा के उस दौर को जंगल राज कहा जाने लगा। इस नए कॉम्बिनेशन ने जोरदार ऊर्जा भर दी बसपा के कैडर में। 90 के दशक में नारा लगा था, ब्राह्मण साफ ठाकुर हाफ बनिया माफ, लेकिन 2007 में नारा लगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा तो हाथी आगे आएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। लेकिन अक्टूबर 2006 में काशीराम की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। काशीराम अपने परिवार को बहुत पहले त्याग चुके थे, लेकिन 2003 में उनके बेड रेस्ट पर जाने के बाद अब वो परिवार उनकी लेगेसी को क्लेम करने सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा था। काफी फजीहत हुई। मायावती पर तमाम आरोप लगे, लेकिन उन्होंने कांशीराम को छोड़ा नहीं। ये उनकी अपने मेंटोर को श्रद्धांजलि थी। वैसे तो 2003 में ही वो मुखिया हो चुकी थी, लेकिन 2007 चुनाव से ठीक पहले कांशीराम के गुजरने के बाद अब बसपा की सर्वे सर्वा मायावती ही हो चुकी थी। पहली बार किसी विनर की तरह कैंपेन किया गया। जब नतीजे आए तो बसपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में थी। मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी और पहली बार पूरे बहुमत के साथ। आखिरकार कांशीराम का सपना पूरा हुआ था। 1991 में पहली बार यूपी में किसी को पूर्ण बहुमत से सत्ता मिली थी। बसपा को 206 और बसपा गठबंधन को 224 सीटें मिली। बार बार ये बताना ठीक नहीं है कि राजनीति कैसा खेल है, पर ऐसा ही है। कांग्रेस के समर्थन से मायावती ने अपनी राजनीति बदली थी। तब सोनिया गांधी और मायावती के लिए मुलायम सिंह यादव दुश्मन नंबर एक थे, लेकिन 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर मायावती ने यूपीए सरकार का विरोध कर दिया। अविश्वास मत पारित होने की नौबत आ गई। लगा कि यूपीए की सरकार गिर जाएगी। यहां पर मुलायम सिंह यादव ने यूपीए को सपोर्ट कर दिया। मायावती ने यह स्टेप कैलकुलेटेड तौर पर लिया था। उन्हें यह अंदाजा लग गया था कि अगर समीकरण इधर उधर हुए तो 2009 के लोकसभा चुनावों के बाद गठबंधन की केंद्र सरकार की मुखिया हो सकती है। ऐसा उनके सलाहकारों ने समझाया था। वो अपने प्रधानमंत्री बनने को लेकर इतना आत्मविश्वास में आ गई कि देश के दूर दूर के इलाकों में उसी हिसाब से रैली भी की। उन्होंने पूछा कि क्या एक दलित की बेटी पीएम नहीं बन सकती।
यूपी में भी बनाएंगे, सेंटर में भी आगे चल के बनाएंगे,
सेंटर में ज्वाइन करेंगे।
समाज को इस देश का मालिक बनाना चाहते हैं।
ये तो ब्रह्मास्त्र था जो उन्होंने वक्त से पहले चला दिया था। ये दांव उल्टा पड़ा। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद यूपीए सरकार दोबारा सत्ता में आ गई और मायावती के सपने टूट गए। यूपी की 80 में से सिर्फ 19 सीटें बसपा को मिली, लेकिन मायावती को अंदाजा था कि उन्हें 60 से ऊपर सीटें आएंगी। ऐसा लगा था कि वो पहली दलित महिला पीएम बन जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद यूपी में भी उनकी राजनीति फिसल गई। एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर 3 साल सफलतापूर्वक चली सत्ता आखिरी 2 साल में बिखर गई। मेडिकल स्कीम्स में घोटाला, इंडस्ट्री के लिए जमीन एलोकेशन में घोटाला इत्यादि मामले उछले। युवाओं के मुद्दे को लेकर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने बसपा सरकार को घेरना शुरू किया। छोटा सा मुद्दा पढ़ते पढ़ते मायावती के गले की फांस बन बैठा। उन्होंने कोशिश की छवि बदलने की। 2 दर्जन मंत्रियों को हटाया, बदला, लगभग 100 कैंडिडेट बदले। ये भी कह दिया कि यूपी को 4 भागों में बांट दिया जाए। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा की करारी हार हुई।
नतीजे घोषित हो चुके हैं और ये नतीजे हमारी पार्टी के अनुकूल न आने के कारण आज मैंने विधानसभा भंग करने के सिफारिश करने के साथ साथ अपने मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा महामहिम श्री राजपाल जी को सौंप दिया है। हालांकि मेरी इस सरकार के बारे में
जहां 2007 में 403 में से 206 सीटें मिली थी, वहीं 2012 में मात्र 89 सीटें मिली। तब तक उन पर तमाम आरोप लग चुके थे, आत्मुग्ध रहने के, खुद की मूर्तियां बनवाने के, ट्रांसफर पोस्टिंग कराने के, पैसे लेने के और बुरे व्यवहार के। धीरे धीरे ये इमेज बन गई कि मायावती ने 5 साल में सिर्फ 2 काम किए, हाथी की मूर्तियां बनवाई और खुद की मूर्तियां बनवाई। ये बात सच है कि खुद की मूर्तियां बनवाने का काम बहुत भारी पड़ गया। 2012 में हार के बाद मायावती ने कहा था कि कोई बात नहीं, ये तमिलनाडु की डीएमके और एआईडीएमके की तरह है। यूपी में भी सपा और बसपा के बीच सत्ता बदलती रही है, लेकिन तब तक देश में सत्ता एक अलग तरफ करवट लेने लगी थी। देश में भाजपा को अप्रत्याशित सपोर्ट मिल रहा था, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। 2014 में होने वाले लोकसभा चुनावों की इस आंधी को मायावती नहीं पहचान सकी और इस बार भाजपा से अपने रिश्ते नहीं सुधार पाई। नरेंद्र मोदी ने यूपी में अपनी एक रैली में कहा, सबका विनाश तय है, सबका यानी स से सपा, ब से बसपा और क से कांग्रेस। जवाब में मायावती ने कहा कि भाजपा मतलब बहुत ज्यादा पाप का घड़ा। लेकिन अब स्थिति बदल गई थी। पहले की राजनीति और चुनाव टेस्ट मैचों की तरह होते थे, नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये आईपीएल की तरह हो गया। दर्शकों का जोरदार उत्साह और भाजपा द्वारा भयानक स्लेजिंग, सोशल मीडिया को भाजपा ने चुनाव का मुख्य स्तंभ बना दिया। बसपा इस सोशल मीडिया में कहीं थी ही नहीं। स्लेजिंग गेम को भाजपा ने रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के स्तर तक पहुंचा दिया। एक तरफा मैचेस। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही यूपी में भाजपा का परचम लहराने लगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में माहौल बन चुका था कि भाजपा अकेले दम पर सरकार बना रही है। पहली बार मायावती ने खूब कोशिश की खुद को रिवाइव करने की। 2017 में 100 टिकट मुसलमानों को दिए। ये ब्राह्मण दलित गठबंधन से अलग मुस्लिम दलित गठबंधन करने का प्रयास था, लेकिन 2017 में उनको सिर्फ 19 सीटें मिली। अब बसपा की डेस्पेरेशन बढ़ने लगी, क्योंकि चुनाव के सारे मुद्दे भाजपा के पास थे। तीन दशक से चल रही सपा और बसपा की राजनीति बैक सीट ले चुकी थी। अब ये तमिलनाडु नहीं, ओरिजिनल यूपी बन चुका था। इसी क्रम में एक नया डेवलपमेंट हुआ। स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा बसपा कभी साथ नहीं आए थे, बल्कि दोनों में कांटे की दुश्मनी थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा बसपा करीब 14 साल बाद एक साथ आए। अब मुलायम सिंह यादव की जगह अखिलेश यादव सपा के मुखिया थे। उन्होंने पब्लिकली मायावती को बुआ कहा और उनके पैर छुए। महागठबंधन तैयार तो हुआ, लेकिन इसकी उम्र ज्यादा नहीं रही। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार मिलने के बाद मायावती ने 4 जून 2019 को गठबंधन तोड़ दिया। हालांकि इसी गठबंधन के चलते मायावती ने स्टेट गेस्ट हाउस कांड का मुकदमा भी वापस ले लिया था। लेकिन बाद में जब बसपा के 7 विधायक सपा में शामिल हुए तो वो इस फैसले पर पछताती नजर आई। इस प्रकार स्टेट गेस्ट हाउस कांड भी इतिहास में दफन हुआ। अन्य राज्यों में बसपा की हालत वैसी ही रही। कैंडिडेट जीतते कहीं कहीं, लेकिन बसपा अपना प्रभाव छोड़ने में नाकामयाब रही। कई जगह उनके विधायकों ने अलग पार्टियां ज्वाइन कर ली। वहीं 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में उसे सिर्फ एक सीट मिली। 20% का वोट शेयर घटकर 13% तक जा चुका है, जबकि 1989 में इलेक्टोरल डेब्यू में बसपा को यूपी में 13 सीटें मिली थी। 2022 में सबसे चौंकाने वाला मतदान मायावती के गांव बादलपुर में हुआ। यहां भाजपा प्रत्याशी को 631 वोट, सपा प्रत्याशी को 451 और बसपा प्रत्याशी को 449 वोट मिले। जबकि एक दौर था कि मायावती के हेलीकॉप्टर के नीचे नीले रंग में रंगे लोग उछलते नजर आते थे। लेकिन मायावती चुनावी हार के बाद मुसलमान वोटरों को दोष देना नहीं भूलती। 2009 से लेकर 2022 तक उन्होंने यही किया है।
मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार ना हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई भी ऐसा नहीं होता जैसा कि हुआ है। और अब समय बीत जाने के बाद ये लोग दोबारा से जरूर पछताएंगे। लेकिन इससे ये स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहां भी दोहराए जा सकते थे।
मायावती एकमात्र ऐसी राजनेता हैं जिन्होंने महापुरुषों के नाम पर जिलों के नाम तो बदले ही, खुद अपने नाम पर भी एक जिला घोषित कर दिया। उन्होंने हाथरस का नाम बदलकर महामायानगर कर दिया था। अपनी मूर्तियां भी बनवाई। इसे दो तरीके से देख सकते हैं। पहला, मेगालोमेनिया, कि वो खुद पर मुग्ध थी। दूसरा, कि एक दलित महिला की मूर्ति तो इस देश में कोई बनवाने से रहा। ये कड़वा सच है तो आगे बढ़कर खुद ही बनवा लो। अगर सिर्फ राजनीतिक यात्रा की नजर से देखें तो ये अद्भुत है, लेकिन दलित आंदोलन के नजरिए से देखें तो कुछ चीजें दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर दो और चीजें मायावती का पीछा करती रही। नोटों की माला पहनने की फोटोज और फ्लाइट भेजकर अपनी छूटी हुई चप्पल मंगवाने की खबर। इन चीजों ने दलित मसीहा की इमेज को ध्वस्त कर दिया। इसका नतीजा 2012 के चुनाव में भी नजर आया, जब कुछ दलित वोट सपा को ट्रांसफर हुए थे। जबकि उनके बारे में कहानी है कि साल 1992 में एक कार्यकर्ता ने मायावती को सूट गिफ्ट किया था, तब से लेकर आज तक उन्होंने सूट के अलावा कोई और ड्रेस नहीं पहनी थी। लेकिन ये शुचिता इन बड़ी खबरों में दब गई और उनकी छवि एक आत्मुग्ध राजनेता की बन गई, जो दलित पॉलिटिक्स के नाम पर अपनी इच्छाओं को पूरा करती है। बसपा की पेरेंट पार्टी बामसेफ जब शुरू हुई थी तो इसमें पढ़े लिखे और नौकरी पेशा दलित ही मुख्य रूप से जुड़े थे। उन्हीं को पहले मोबिलाइज किया गया था, फिर बाद में नारा लगा कि ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया को छोड़कर हर कोई बसपा में आ सकता है। हालांकि दो बार भाजपा के सपोर्ट से सरकार बनी थी। फिर मुसलमानों के वोट के लिए तैयारी की जाने लगी, लेकिन 2007 में इसे बढ़ाते हुए सर्वजन का नाम दिया गया और ब्राह्मणों को भी शामिल किया गया। अब तो वो किसी के भी खिलाफ नहीं बोलती, दलितों के ऊपर अत्याचार होते रहते हैं तब भी नहीं बोलती। तो ये स्ट्रेटजी बदलती गई, मूल आंदोलन से राजनीति अलग होती गई। यही नहीं, मायावती के राइज के बाद ओबीसी नेता और अपर कास्ट नेता भी पार्टी छोड़ते चले गए। सोनेलाल पटेल, रामलखन वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, बाबू सिंह कुशवाहा, लालजी वर्मा इत्यादि नेताओं ने बसपा छोड़ दी। पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मायावती ने पार्टी से बाहर कर दिया। एक लॉयल नेता बचे हुए हैं, उमा शंकर सिंह, जो 2022 में बसपा के एकमात्र विधायक हैं। दलितों के पास बसपा से जुड़े रहने का कोई इंसेंटिव नजर नहीं आता अब। जब कांशीराम ने मोबिलाइज करना शुरू किया था तब एक उत्साह था, लेकिन अब उदासीनता है। मायावती जब पहली बार सांसद के रूप में संसद पहुंची थी तो कुछ लोगों ने उनके कपड़ों के स्टाइल, बालों में तेल और बोलने के स्टाइल को लेकर मजाक बनाया था। कुछ को उनके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन दो दशक बाद वही महिला देश के प्रधानमंत्री की दौड़ में थी। उन पर हजारों आरोप लगे होंगे, लेकिन दलित समाज के लिए वो गौरव की बात रही है, बल्कि वो सारे समाज के लिए गौरव की बात है। खुद को राजनीति में बनाए रखने की उनकी लड़ाई का सभी सम्मान करते हैं। उनका करियर एक ख्वाब है जो राजनीति के साथ खेलता रहा। चाहे कोई कितना भी धुर विरोधी हो, वो इस बात को स्वीकार करेगा कि हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था को तोड़ते हुए मायावती ने एक ऐसा मकाम हासिल किया जिसको आप कभी भूल नहीं सकते। मायावती ने कभी शादी नहीं की, उनके निजी जीवन के बारे में कोई नहीं जानता, ये भी कोई नहीं जानता कि वो क्या पसंद करती हैं और क्या नहीं। हाँ, जब उन्होंने अपनी मूर्तियां बनवाई तो उसमें कोट और पर्स डालना नहीं भूली। जहां अम्बेडकर की मूर्तियों के हाथ में किताब नजर आती रही, वहीं मायावती की मूर्तियों के हाथ में पर्स, ये विडंबना भी मौजूद है। मीडिया एक लंबे समय तक मायावती के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाता रहा। कई बार तो उनके लिए जाति सूचक शब्द लिखे गए, कई बार उनका माखौल उड़ाया गया। लेकिन इंटरनेट की दुनिया आने के बाद ये सब बदला। फेमिनिज्म की समझ समाज में फैलने के बाद लोगों को समझ आया कि एक नजरिया ये भी है कि मायावती अचीवर है, और जिस तरीके से उनसे मीडिया पेश आया वो कतई जातिवादी था। हाल फिलहाल में कई बार ये अफवाह उड़ी कि मायावती को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये अफवाह इतनी उड़ी कि उन्होंने खुद इसका खंडन किया। हालांकि राजनीति में कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा।
मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ।
इस सारी राजनीति में एक बात तो पूरी तरह सच है, जब वो आईएएस की तैयारी कर रही थी तब कांशीराम ने उनसे कहा था, राजनीति में आओ, आईएएस अफसर तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे, नाचे भी। मायावती अपने शुरुआती दिनों की रैलियों में बोला करती थी, चमारी हूँ, कुंवारी हूँ, तुम्हारी हूँ। उनकी इस ललकार पर दलित समाज हर बार लड़ा था, तो लोग इसे भूलेंगे नहीं और मायावती भारत के जनतंत्र में हमेशा मौजूद रहेंगी।
देश और दुनिया भर के नेताओं की इस यात्रा के साक्षी बने हर एपिसोड में।
सभी प्रमुख पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर जियो सावन, गाना, एप्पल, आईट्यून्स और स्पॉटिफाई पर।